पृष्ठ संख्या 117। रूस और जापान के बीच युद्ध 1904 से 1905। ब्रिटेन और जापान के बीच संधि हो जाने के बावजूद भी रूस के साथ युद्ध होने पर जापान की विजय पूर्णतः निश्चित न थी। इसलिए युद्ध से बचने के लिए जापान ने बहुत देर तक बातचीत द्वारा ही मामलों को तय करना चाहा। रूस लगातार जापान की मांगों को अस्वीकार करता रहा और प्रत्यक्षतः उसका जापान के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया बना रहा। जापान एक शर्त पर मंचूरिया को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर स्वीकार करने पर सहमत हो गया कि इसके बदले रूस भी इसी तरह कोरिया को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर मान ले। रूस ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। दक्षिणी समुद्र तट तथा कोरिया के उत्तरी सीमापवर्ती क्षेत्रों में रूस की गतिविधियों ने जापान को इस बात का विश्वास दिला दिया कि जार शासन के साम्राज्यवादी लोग जानबूझकर प्रायद्वीप में आक्रामक नीति का अनुसरण कर रहे हैं। जापान के दृष्टिकोण से अब युद्ध के सिवाय और कोई चारा न था। दोनों ही देश जोर शोर से युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन राजनयिक संबंधों के टूटते ही युद्ध की घोषणा किए बिना ही जापान ने फरवरी 1904 में अचानक आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उसे कुछ प्रारंभिक लाभ प्राप्त हुए। एक वर्ष से भी अधिक समय तक युद्ध जारी रहा। इस युद्ध में रूस को एक कठिनाई थी। रूस को ऐसे स्थान पर युद्ध करना पड़ा था जो उसके यूरोपीय अधिकृत क्षेत्रों से हजारों मील दूर था। उसे सेना एवं रसद के सामान को बहुत दूर से लाना पड़ता था और इसके लिए यातायात का एकमात्र साधन इकहरा रेल मार्ग था। उसका प्रशासन, विशेष रूप से नौसेना का प्रशासन, भ्रष्टाचार एवं अक्षमता का शिकार था। जापानी सेनाएं अपने देश के निकट ही थी और सुसंगठित थी तथा उनका नेतृत्व योग्य हाथों में था। उनकी योग्यता एवं कार्यकुशलता के तटस्थ देशों को आश्चर्यचकित कर दिया। रूस की सेनाओं ने जापान का दृढ़ता से प्रतिरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पीछे खदेड़ दिया गया। जार के वे समुद्री बेड़े जो महाद्वीप स्थित सेना के साथ जापान की संचार व्यवस्था को नष्ट भ्रष्ट कर सकते थे, या तो नष्ट कर दिए गए या पोर्ट आर्थर में घेर लिया गया। युद्ध में भीषण प्रतिरोध के पश्चात जापान ने पोर्ट आर्थर पर कब्जा कर लिया और कुछ ही सप्ताह पश्चात जापान के आक्रमण के सामने मंचूरिया की राजधानी मुकदेन ने भी घुटने टेक दिए। गुड होप अंतरिप के चारों ओर अपने प्रसिद्ध परिभ्रमण के पश्चात बाल्टिक का जहाजी बेड़ा जापान समुद्र के युद्ध में जापान और कोरिया के बीच स्थित तुशीमा जलसंधि में नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। अब पूर्वी समुद्र पर जापान के नियंत्रण को कोई खतरा न था। इन पराजयों के बावजूद भी अभी रूस पूर्णतः अभिभूत नहीं हुआ था। यदि आंतरिक कलह न उठ खड़ा होता तो संभवतः रूस और अधिक दृढ़ता से लड़ता और शायद जीत भी जाता। रूस की जनता इस युद्ध के पक्ष में न थी। बाद में जब रूस में विद्रोह छिड़ गया तो वह शांति के लिए बातचीत शुरू करने के लिए पूर्णतः तैयार हो गया। जापान के कूटनीतिज्ञ भी बातचीत द्वारा समझौता करने के पूर्णतः इच्छुक थे। युद्ध के मैदान में अभी तक सफलता ने उनके चरण चूमे थे, लेकिन वर्षों की लंबी तैयारी के कारण उनकी वित्तीय अवस्था पहले से ही काफी खराब हो चुकी थी। अतएव वह और अधिक लंबे युद्ध के व्यय भार को सहन करने में असमर्थ था। जापान स्वयं में कोई बहुत अधिक धन संपन्न देश नहीं था और अनिश्चित काल तक ऋण भी नहीं लेता रह सकता था। फलस्वरूप जब थियोडोर रूजवेल्ट ने मध्यस्थता का प्रस्ताव किया तो दोनों देशों ने इसका स्वागत किया। दोनों देशों के बीच समझौते की बातचीत पोर्टस अस्माउथ न्यू हैम्पशायर में आरंभ हुई और फलस्वरूप रूस और जापान के बीच एक संधि निष्पन्न हुई, जिनको इसी शहर के नाम से पुकारा जाता है। इस संधि के अधीन पहला कोरिया में जापान के प्रधान राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक हितों को मान्यता प्रदान की गई। दूसरा, दोनों देश एक साथ मंचूरिया को खाली करने पर सहमत हो गए। तीसरा, रूस ने अपने अधीनस्थ लियाओतुंग प्रायद्वीप के इलाके के पट्टे को जापानियों को हस्तांतरित कर दिया और दक्षिणी मंचूरिया की अपनी रेल व्यवस्था तथा खानों के विकास के विशेषाधिकार जापान को सौंप दिए। रूस ने काराफूतो यानी सखालिन का दक्षिणी भाग जापान को दे दिया। पांचवा, रूस ने अपने द्वीपों के उत्तरी एवं पश्चिमी समुद्र में मछली पकड़ने के कुछ विशेषाधिकार जापान को समर्पित कर दिए तथा छठा, दोनों देश परस्पर युद्धबंदियों पर व्यय की गई धनराशि देने पर सहमत हो गए, जिसमें जापान को रूस की अपेक्षा लगभग 2 करोड़ डॉलर अधिक प्राप्त हुए। इसके अलावा सातवां, दोनों देशों को मंचूरिया में प्रति मील रेल मार्ग पर एक निर्धारित अधिक संख्या तक सशस्त्र रक्षक रखने की इजाज़त थी। आठवां, दोनों देशों में से कोई देश सखालिन की किलेबंदी नहीं कर सकता था और न ही मंचूरिया किसी सामरिक उद्देश्य के लिए मंचूरिया रेल मार्ग का उपयोग कर सकता था। तथा नौवां, दोनों देश इस पट्टे पर ली गई भूमि को छोड़ मंचूरिया के अन्य भागों में चीनी प्रभुत्व को पुनः स्थापित करेंगे तथा उसका आदर करेंगे और उस प्रदेश में सभी देशों के लिए द्वार खोलकर सभी को समान वाणिज्यिक एवं औद्योगिक अवसर प्रदान करेंगे। जापान के लोगों को यह संधि बहुत अधिक अप्रिय प्रतीत हुई। देश के अधिकांश वर्गों ने बहुत अधिक हर्जाने की रकम की आशा की थी। इस युद्ध में जापान की विजय इतनी निश्चित थी कि समझौते की शर्तों को देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि विजेता को अपनी विजय का पूर्ण न्यायोचित लाभ नहीं दिया गया। पोर्टसमाउथ में बातचीत आरंभ करते समय जापान के राजदूत ने हर्जाने की बहुत अधिक राशि की मांग की थी। संभवतः इसलिए नहीं कि उसे इसके मिलने की आशा थी, बल्कि इसलिए कि यह एक कूटनीतिक चाल थी। यह केवल रूसियों को इस बात का प्रलोभन देने के लिए किया गया था कि वे धनराशि देने के बदले अधिक भूभाग देने को तैयार हो जाएं। उचित समय पर जापान ने हर्जाने की मांग वापस ले ली, लेकिन जापान की जनता इस चाल को न समझ सकी। फलस्वरूप उन्होंने बेहद निराशा और क्षोभ प्रकट किया। इस संधि से उत्पन्न जापान की जनता के असंतोष के कारण अमेरिका को भी उसके कोप का भाजन बनना पड़ा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही मध्यस्थता की थी और उसी के हस्तक्षेप के कारण शांति समझौता असफल होने से मचा था। इसके अलावा संधि की यह बातचीत अमेरिका में हुई थी। रूस जापान युद्धों के परिणाम। लेकिन फिर भी जापानी साम्राज्यवादी वर्ग अपनी उपलब्धियों से असंतुष्ट था। उसने रूस की प्रगति का मार्ग बंद कर दिया था और कोरिया तथा दक्षिणी मंचूरिया में अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया था। अब उसे विश्व की प्रमुख शक्ति का दर्जा मिल गया। तुर्की के आक्रमणों की लहर के शिथिल पड़ने के बाद से जापान ही एक ऐसा गैर यूरोपीय देश था जिसने किसी प्रथम श्रेणी के पश्चिमी देश का युद्ध क्षेत्र में सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। पूर्व के सभी देशों ने जापान की इस विजय का हार्दिक स्वागत किया और इसने फारस, भारत तथा चीन में राष्ट्रीय तथा सुधारवादी आंदोलनों को प्रेरणा प्रदान की। सुदूर पूर्व के देश भले ही जापान को कितना भी नापसंद क्यों न करते हो, लेकिन अब वे उसे एक आदर्श एवं ऐसे देश के रूप में देखने लगे जो उनके पास यूरोप के देशों की पराधीनता से मुक्ति का दिव्य संदेश लेकर आया हो। जापान ने इस तथ्य को सिद्ध कर दिखाया कि पश्चिम के देश अपराजेय नहीं हैं, उन्हें अनेक अपने ही साधनों से पराजित किया जा सकता है। इससे पश्चिम के देशों में जापान की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हुई। अगस्त 1905 में जब पोर्ट्समाउथ में समझौते की बातचीत चल रही थी, आंग्ल जापानी संधि को पुनः नवीकृत किया गया। पूर्व संपादित समझौते के समान ही इसमें भी सुदूर पूर्व में शांति, चीन की प्रादेशिक अखंडता तथा अन्य देशों के लिए चीन में प्रवेश के लिए मुक्त द्वार नीति की व्यवस्था थी। इस संधि के क्षेत्र को भारत तथा सामान्य सारे सुदूर पूर्व तक बढ़ा दिया गया, जिससे इंग्लैंड को ही लाभ था। इसके साथ ही कोरिया में जापान के विशेष हितों को फिर से मान्यता प्रदान की गई। अगर निर्दिष्ट क्षेत्रों में कोई बाहरी देश किसी एक मित्र देश के अधिकारों पर हस्तक्षेप करता तो दूसरा मित्र देश संबद्ध मित्र देश की सहायता के लिए आता। अभी तक इंग्लैंड को रूस की ओर से भी खतरा बना था और यदि कहीं भारत पर रूस की ओर से आक्रमण हो तो उस स्थिति में वह जापान की सहायता प्राप्त करना चाहता था। यहाँ यह बता देना संगत होगा कि 1911 में भी 1905 की ही तरह इस संधि का 10 वर्ष के लिए पुनः नवीकरण कर दिया गया। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने मिलकर एक त्रिदेशीय सद्भावना संघ बना लिया, जिससे कम से कम कुछ काल के लिए ब्रिटेन को रूस की ओर से भारत व चीन पर जो आक्रमण का खतरा था वह समाप्त हो गया। लेकिन अब जर्मनी एक भयंकर खतरे के रूप में सामने आ खड़ा हुआ था, इसलिए जर्मनी की ओर से संभावित आक्रमण की आशंका को ध्यान में रखकर उसने जापान के साथ समझौता कर लेना बुद्धिमत्तापूर्ण समझा। इस संधि के अंतिम पुनः नवीकरण में केवल दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। पहला, उसमें कोरिया के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था, जिसे सन 1910 में जापान ने अपने अधिकार में ले लिया था। दूसरे संधि में इस बात की व्यवस्था कर दी गई थी कि कोई भी देश किसी ऐसे देश के साथ युद्ध नहीं करेगा जो सामान्य पंच निर्णय की संधि में शामिल हो। अनेक लोगों की दृष्टि में इस अंतिम परिवर्तन का प्रायोजन जापान तथा अमेरिका के बीच युद्ध होने पर ब्रिटेन को जापान की मदद करने के दायित्व से मुक्त करना था, क्योंकि हाल में ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ इसी प्रकार की एक संधि संपन्न की थी, यद्यपि अभी इसका अनुसमर्थन नहीं हुआ था। ध्यान रहे कि सन 1908 में जापान ने अमेरिका के साथ भी एक पंच निर्णय संधि की थी। उसी साल इन दोनों देशों के परस्पर रूट ताकाहीरा समझौते के द्वारा इस बात की स्पष्ट घोषणा की थी कि दोनों देश यथापूर्व स्थिति कायम रखेंगे, प्रशांत में एक दूसरे के अधिकृत क्षेत्रों को मान्यता प्रदान करेंगे, चीन की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता एवं मुक्त द्वार की नीति को सुरक्षित रखेंगे और निर्धारित सिद्धांतों में गतिरोध उत्पन्न होने पर एक दूसरे को अपेक्षित कार्रवाई की सूचना देंगे। सन 1907 में फ्रांस व रूस का जापान के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने सुदूर पूर्व में शांति के प्रयत्नों का समर्थन किया और चीन की स्वाधीनता तथा अखंडता को स्वीकार किया। वह इसी वर्ष बने त्रिदेशीय सहभावना संघ का ही एक स्वाभाविक सहगामी था। जापान ने इन समझौतों तथा कुछ अन्य समझौतों के द्वारा, जिनका उल्लेख आगे चलकर किया जाएगा, सुदूर पूर्व के मामलों में अपने हस्तक्षेप के अधिकार को निश्चित सा बना लिया। 1894 या उसके बाद भी 1904 से पूर्व की भांति अब उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती थी और न ही उसके महत्व को अस्वीकार किया जा सकता था।